कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण उपस्थित सभी का स्वागत है।
प्रशासन अधिकारी चाहे पिता हो या शिक्षक,
ये सब अभूत जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं।
इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अगर इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए।
हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, जहां पर भगवान अर्जुन को बहुत ही एक विशिष्ट उपदेश पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर यहां इस बात पर चर्चा हो रही है, इसके पूर्व के श्लोक अगर आप सुने हैं पढ़े हैं, तो भगवान नियत कर्म पर जोर दे रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति नियत कर्मों का पालन करता है तो भगवान को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है, और जो व्यक्ति नियत कर्मों का पालन नहीं करता उसका नाश निश्चित है। और अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा होने के नाते उसे युद्ध करना चाहिए, और ये भगवान की इच्छा नहीं और आशा नहीं है, परंतु अर्जुन युद्ध छोड़कर रणभूमि से भाग रहा है, अर्थात अपना नियत कर्तव्य छोड़कर वो पलायन कर रहा है। और यदि आचार्य श्रेष्ठ है, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, तत्त एवं दर्जन सामान्य व्यक्ति उसी का अनुकरण करते हैं, तो भगवान अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा एक बहुत ही भयानक चेतावनी देते हैं। अर्जुन आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, सामान्य योद्धा नहीं हो, आपका यज्ञ, आपकी कीर्ति, आपका शौर्य, आपका पराक्रम, आपके साथ शत्रु जो है पूरे त्रिलोक में चर्चित है, सभी लोग इसकी चर्चा करते हैं, और जो भी व्यक्ति गुरु के पास शस्त्र विद्या को ग्रहण करता है वो इस उद्देश्य के साथ ग्रहण करता है कि मुझे भी अर्जुन के समान रहना है। अगर शिक्षक से लेकर एक साधारण सैनिक, योद्धा, रथी, महारथी, अतिरथी, ऐसे बड़े बड़े सेनापति भी आप ऐसा बनना चाहते हैं, और जब आप युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कितने भी देखो कि जब विपदा आ जाए तो हमें युद्ध से पलायन करना चाहिए। तो आप अगले केवल करते से चुत नहीं हो रहे हो, आपके आदर्श के द्वारा, भले वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, इसके द्वारा आप सभी जनों को, लोगों के शिक्षित कर रहे हो कि लोग के आमने से निर्माण करें। इसी यद प्रमाण उनके लोग तक अनुबंध थे, वह अपने अनुसरणीय कारण से आदर्श प्रस्तुत करता है और संपूर्ण विश्व कोई एक दो चार लोग नहीं, संपूर्ण विश्व सारा चल रहा है। तो इस श्लोक के द्वारा केवल अर्जुन को यहाँ पर चेतावनी नहीं दी जा रही, हम सबको भगवान भी यहाँ पर चेतावनी देते हैं। आप में से अधिकांश माताएं प्रभु या जो पुरुष वर्ग है, किसने किसी घर में कोई व्यक्ति प्रमुख है, समाज में, ऑफिस में, कंपनी में, बड़े बड़े पदों पर कार्य करते हैं, तो इन सारे पदों पर जब हम कार्य करते हैं तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा आचरण ऐसा हो जो सामान्य लोगों को भी आदर्श बन जाए, वो हमसे तो सीखे। जब व्यक्ति बड़े पदों पर कार्य करता है, घर में हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी, तो सामान्य लोग भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर वो गलत व्यवहार भी कर रहा है तो लोग इस प्रकार से विचार करते हैं, अगर जब हम इस पद पर कार्य करेंगे, इस पद को प्राप्त करेंगे, तो हम भी इस प्रकार से अगर गलत कार्य करें तो कोई बुराई नहीं है। आज देश का बड़ा मंत्री से लेकर छोटा सिपाही या छोटा चपरासी तक इस स्थान पर बैठकर बोलने लायक बात नहीं है, लेकिन तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है। और जो भी व्यक्ति उस पद को प्राप्त करता है वो भी उसी प्रकार काम करता है, ना देश की चिंता है, ना देश के विकास की चिंता है, ना लोगों के कल्याण की चिंता है,
बस अपने कल्याण में संतोष रहते हैं। तो इस प्रकार से जब बड़ा व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है तो नीचे लोग भी इस प्रकार से स्वार्थी बन जाते हैं, और जब उच्च पदस्थ व्यक्ति निस्वार्थ होकर दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करता है तो अपने आप निचले लोग उस प्रकार का आदर्श प्राप्त करते हैं। तो श्री गोपाल के अपने तात्पर्य बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, लोक संग्रह अर्थात सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए महान राजा होने के पश्चात जनक जैसे राजाओं ने नियत कर्मों का पालन किया। अर्थात हमने इस बात पर चर्चा की थी, जनक महाराज जैसे महान भक्त जो चार वर्ण चार आश्रम से परे, अर्थात कोई चार वर्णाश्रम धर्म पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की महानतम तो भक्ति प्राप्त कर लेता है उसे किसी प्रकार के नियत कर्मों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और भगवान की प्रेमा भक्ति पूर्ण सही कर लेता है। तो इतने ऊंचे भक्त होने के नाते भी जनक महाराज को क्या आवश्यकता थी कि वे नियत कर्मों का पालन करें। मतलब जिस प्रकार से कोई डिग्री होल्डर जो होता है वो पहले दूसरी कक्षा के नियमों का पालन करें, उस प्रकार के व्यवहार करें, तो ये अनुकूल नहीं लगता है। जो शिक्षक होता है वो बहुत ही उच्च भविष्य होता है, शिक्षित होता है, फिर भी छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, अ आ ई से सिखाता है। और देखें आप कि वो जो शिक्षक होता है जब सेवा में नियुक्त होता है और जब तक निवृत्त हो जाता है तब तक वही सिखाते रहता है, स्वर व्यंजन सिखाते रहता है बच्चों को। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खुद सीख रहा है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं, परंतु दूसरों को सिखाने के लिए खुद भी क्या कर रहा है, उसका उच्चारण कर रहा है। उसी प्रकार से जनक महाराज के बारे में भगवान कहते हैं उन्हें नियत कर्मों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए महान राजा होने के बाद भी जनक महाराज नियत कर्मों का पालन कर रहे हैं। भगवान ने वर्ण आश्रम की उत्पत्ति जो है सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए समाज में रहते समय लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये चार वर्ण दिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास, ये चार वर्ष आश्रम दिए हैं। इसमें रहकर व्यक्ति मनुष्य जीवन को सफल हो सकता है, और जब व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है तो सामान्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता, परंतु इस श्लोक के द्वारा भगवान सिखाते कि देखो जनक जैसे महाराज भी राजा भी सामान्य नियमों का पालन करते केवल दूसरों को सिखाने के लिए। इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को बताते कि अर्जुन तुम भी कोई सामान्य राजा नहीं हो, आपका यश जो है त्रिभुवन में फैला हुआ है, और महान राजा भी या महान सेनापति सैनिक योद्धा भी आप जैसा बनना चाहते हैं, पर आप अगर इस नियमों का पालन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका तो अधपतन होने वाला है, परंतु आपके इस गलत आचरण के कारण इतने बड़े बड़े लोग भी अपने पद से चुप हो जाएंगे। तो भगवान दूसरी बात में समझाते हैं कि समाज में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान देता है उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी उत्तरदायी है, उसका एक गलत आचरण गलत शब्द इसका प्रभाव पूरे समाज पूरे देश के पूरे लोगों पर पड़ता है। कोई सामान्य चपरा से कुछ गलत बात बोल दे तो इतना कोई मीडिया वाले तो उसका बवाल नहीं खा जाते है ना, परंतु तो कोई बड़ा व्यक्ति समाज का प्रतिष्ठित नेता है अगर कोई छोटी सी बात में कुछ बोल दे तो पूरे समाज में फैल जाती है कि कोई किस प्रकार से है वक्तव्य किया, क्योंकि कहते हैं कि संन्यास अल्पचित्र सर्वलोकिका, अगर कोई सन्यासी कोई विरक्त व्यक्ति साधु कुछ छोटी सी गलत बात कर दिया, गलत बात कह दी, तो सर्व लोकेगा, तो सभी लोग इसकी चर्चा करने लग जाते हैं। और तो सामान्य व्यक्ति बड़ी बात भी कर देगा, बड़ी गली गलती भी कर देगा, तो कोई इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होता है? आप इसमें कोई इस प्रकार से बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको संभाल के काम करना पड़ता है। हाँ, उसका आचरण भी, उसका पद भी है, समाज में उसके यश भी है, उसके कार्य के कारण लोग उसको सम्मान देते हैं और लोग उसके आदर्श कार्य करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और जब आदर्श दूसरों को देने वाला व्यक्ति जो होता है, अगर उससे कुछ गलती हो तो लोग तुरंत स्वर उंगली उठाते, देखो इसने ऐसा किया। तो लोग ऐसे आदर्शवान व्यक्ति से 100% आदर्श की अपेक्षा करते हैं। और भगवान आपको क्या कहते हैं? अर्जुन, तुमने अब तक कभी यूं से पलायन नहीं किया है और ना भी कई गलत बात की है, और आज महाभारत के युद्ध भूमि से अगर आप पलायन कर दोगे तो क्या होगा? अब तक आपने जितना भी यश कीर्ति कमाई थी सब कुछ धूल में नष्ट हो जाएगा। ये पहले बाजू भगवान यहां पर समझाते, दूसरी साइड भगवान का समझाते हैं, समाज में ऐसे लोग रहेंगे जो आपके इस गलत आचरण का लाभ उठाएंगे। लोग भी अपने कर्तव्य से पलायन करने का प्रयास करेंगे। आज जो श्लोक हम चर्चा करिए केवल अर्जुन के लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए भी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण श्रेष्ठ पुरुष की जिम्मेदारी का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के कार्य का सामान्य जन अनुसरण अथवा अनुकरण करते हैं। एक शूद्र व्यक्ति का, एक तुच्छ व्यक्ति का, एक चपरासी का, कोई व्यक्ति ऐसे करेगा? मैंने जो कहेगा मुझे भी चपरासी जैसा चपरासी बनना है। लेकिन एक चपरासी क्या कहता है? मुझे मैनेजर के पद उस पोजिशन को कहा। तो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते। तो जो पहले से ऊपर बैठा हुआ है या उच्च पदस्थ व्यक्ति जो है उसको बहुत ही संभाल के अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और यही बात भगवान यहां पर समझा रहे हैं। तो श्लोक के प्रारंभ में भगवान कहते हैं यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्त ये वही कर रहा है। तो महापुरुष अर्थात महापुरुष ऐसा नहीं कि बहुत ही साधु जैसा होना चाहिए, बड़े राजा जैसा होना चाहिए। तो महापुरुष अर्थात क्या है? जिसके पास सद्गुण है या अपने आचरण में श्रेष्ठ है, दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करता है, ऐसे व्यक्ति को महापुरुष यहां पर कहा गया है। तो उसका आचरण जिस जिस प्रकार का होता है सामान्य व्यक्ति को उसका अनुकरण करता है। तो श्लोक में उन्होंने महापुरुष अथवा श्रेष्ठ पुरुष की व्याख्या यहां पर दी गई है। वास्तविक महापुरुष उसे कहा जाता है शास्त्रों की दृष्टि से जो पूर्णतः कृष्ण भावना भूत है, अथवा वह व्यक्ति जो यदि पूर्णतः कृष्ण भावना भूत नहीं है परंतु वह बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी महापुरुष कहा जाता है। जो पहले से कृष्ण भक्ति में या आध्यात्मिक शास्त्रों में ज्ञान में बहुत ही उन्नत है और स्वयं उस शास्त्रों का पालन भी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। अथवा जो इस मार्ग में आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, उसका पालन कर रहा है, शायद उसे अपने जीवन में पूर्ण यश प्राप्त ना भी हुआ हो परंतु एक श्रेष्ठ मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी साधु या महापुरुष कहा जाता है। देखिए आप सभी भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भले आप कोई एक माला, दो माला, चार माला, दस माला, सोलह माला जाप कर रहे हैं, कोई अभी अभी भक्ति में जुड़ा हुआ है, कोई पांच सात से दस साल से बीस साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ है,
परंतु जब आप मंदिर में आपने आना शुरू किया है, आप भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, आपकी आदि माला भी है, तो तुरंत लोगों का दृष्टिकोण आपसे बदल जाता है आपके प्रति, है ना। तो जब आपके हाथ में आप भगवान का नाम जप कर रहे हो और आपके मुंह से गलत शब्द भी निकल रहे हैं, दूसरों से बात कर दिया, ये बार आपका गलत हो रहा है, तो तुरंत लोग आपको टोक देते हैं, अरे भैया आप साधु, आपको साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब आप आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ करते तो लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति बदल जाता है, अरे भैया अपनी साधु बन जाएगा, ये आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहा है, हालांकि अपने जीवन हमारा पूर्ण हुआ भी नहीं है, पर इस मार्ग से जुड़ने के पश्चात लोगों का हमारे प्रति दृष्टिकोण बहुत ही ऊंचा हो जाता है। तो इस महापुरुष शब्द जो यहां पर उपयोग में लाया गया है भगवान कहते हैं, उसका तात्पर्य यही है, भले आप आध्यात्मिक प्रवर्तन पड़े चले हो या आप आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, तो दोनों भी समाज के लिए आदर्श हो जाते हैं। तो भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि अपुच्च से दुराचार भजते मां परिणाम साधु एवं समंतर है सम्यक एवं सुविधा। यदि कोई जगत से जगत में कर्म करता है, जगत काम करता है, किसी यदि भक्ति में रत लेता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अधिक रहता है, दृढ़ होता है। तो आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हम भगवान की निष्ठा से भक्ति भी करते हैं, नियमों का कड़े से पालन भी करते हैं, और कई बार हम उसे गलत त्रुटियां भी होती है, पाप भी होता है, तो भगवान उस संबंध में ये श्लोक देते हैं, कोई व्यक्ति गलत कार्य भी उसका हाथों से हो रहा है, इच्छा ना होते हुए भी, परंतु भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से दृढ़ता से बना हुआ है। भगवान यहां पर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, आगे भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी मन भक्ति प्रति। वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। एक कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे पद का भी विनाश नहीं होता। भगवान यहां पर इसलिए कहते हैं एक विशेष गुण उस व्यक्ति में होता है, क्या विशेष गुण होता है, वो भक्ति मार्ग में दृढ़ता से टिका है। कोई लोग पापाचार करते हैं, गलत काम करते हैं और भक्ति का ढोंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दाम्भिक दुराचारी कहा जाता है। परंतु इससे पहले के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अपिच्छे से दुराचार मुझे दिमाग मान लेता साधु एवं समाधि में समय एवं समय भले वो दुराचारी अर्थात दुराचार गलत कार्य में लगा हुआ है अर्थात गलत कार्य से हो रहे, लेकिन साथ साथ मेरी भक्ति में दृढ़ता से टिका हुआ है। रूपा जी कहते हैं कि प्रारंभिक भक्ति में ऐसा होता है कि हमें भगवान की भक्ति बड़ी अच्छी लगती है, नाम जाप भी करते हैं, नियमों का पालन भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पूरी आदत के कारण हमसे पूरे कार्य नहीं होते, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वह व्यक्ति मेरी भक्ति में इतनी दृढ़ता से टिका हुआ लगा हुआ है, उसकी एक प्रामाणिकता और दृढ़ता देखकर भगवान आगे क्या कहते हैं, तुरंत धर्मान बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। मतलब भगवान यहां ये भविष्यवाणी भी करते हैं कि वह जल्दी ही एक धर्मात्मा श्रेष्ठ व्यक्ति महापुरुष बनेगा। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं बुद्धि पुत्र मैं नहीं तुम घोषणा करो और निडर होकर घोषणा करो, ऐसे ही तुम्हारे कुछ संकोच है कहो या नहीं कहो, निसंकोचित होकर आपका करो ये घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं, विनाश करते मतलब भक्ति मार्ग में लगा हुआ है लेकिन साथ साथ गलत कार्य भी उसके हाथों से हो रहे हैं, उसकी इच्छा ना होने हुए भी उसके पूरे आदर में का, लेकिन भक्ति में दृढ़ता से और प्रामाणिकता से टिका हुआ है। इसलिए भगवान कैसे भक्ति के बारे में कहते हैं उसका विनाश पता नहीं कभी हो रहा था। अगर भगवान ने पहले अध्याय में शर्त लगा दी होती, जो व्यक्ति शुद्ध है पाप से मुक्त है वही मेरी भक्ति में आगे बढ़ेगा, संभव है ऐसा? हम उससे अधिकार सिर्फ पापी है और पाप करते करते भगवान की
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
लेकिन भगवान राधा गोविंद के चरणों के प्रति हमारी जो निष्ठा है दृढ़ता है, इसके कारण हमारी गलत आदतें गलत धारणाएं बुरी आदतें धीरे धीरे छूट रही है। अगर दृढ़ता का और प्रामाणिकता का जो पल्ला जो है अगर वो हमारा भारी हो जाएगा तो अपने आप बुरी आदतें नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो भगवान ऐसे भक्त के प्रति बड़े दयालु हैं और उनके बारे में भगवान ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं। क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बहुत ही जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और उसके बाद शश्वत शांति मिल चुकी है। जब तक पाप है या पाप पाप में क्रिया हम कर रहे हैं जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं करेंगे। आज समाज में लोगों के जीवन में जो अशांति का जो माहौल हम देखते हैं उसका कारण क्या है? भक्ति का अभाव और पाप का जो जीवन में जो चल रहा है उसके कारण। अगर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा और पाप का अभाव शुरू हो जाएगा तो सभी लोगों के जीवन में शांति निश्चित है। और भगवान इस श्लोक में कहते हैं निश्चित जल्दी ही धर्मात्मा बनेगा, महापुरुष बनेगा। तो जो यहां श्रेष्ठ पुरुष की बात भगवान करते हैं यह एक आदर की श्रेष्ठ है। तो दो प्रकार के पुरुष समाज में होते हैं, एक आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष और दूसरा है आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष। ये दोनों प्रकार के पुरुष समाज में दिखाई देते हैं। आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष अर्थात कौन होते हैं जैसे हम यहां पर चर्चा करते हैं, समाज के लोग आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष को कैसे चुनते हैं? जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनका भक्ति मार्ग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी ऐसे लोग समाज में होते हैं जो अलग अलग श्रेष्ठ पदों पर आ रहे हैं। तो सामान्य लोग ऐसे लोगों को अपना श्रेष्ठ व्यक्ति, मार्गदर्शक, आदर्श नेता या आदर्शवान व्यक्ति के रूप में चुनते हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, कीर्ति, बल, ज्ञान, वैराग्य, अतः श्रेष्ठ व्यक्ति उसका जन्म हुआ है, इसे राजा महाराजा के खानदान से उसका वंश परंपरा आगे आ गया, ऐसे व्यक्ति को लोग अपना आदर्श मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। किसी व्यक्ति के पास विशेष कला गुण है, कोई अति विशेष कला गुण धारी व्यक्ति भी होता है और खासकर हम देखते हैं ऐसे लोग देखना आज जिनका कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर उसे आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष को कहा गया है भले वो आध्यात्मिक जीवन से कार्यक्षेत्र से जीवन से एक कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उनके बारे में कहा गया है और कृपा भसना भी करते हैं कि लोग व्यावसायिक कथाकार बनते हैं। सुखदेव महाराज जी ने कभी परीक्षित महाराज जो चतुर्थी सम्राट थे कथा कहने से पहले कहा नहीं कि देखो तुम चतुर्थी सम्राट और राजा हो, बड़े धन तुम्हारे पास है, 7 दिन तक मैं तुमसे कथा कहूंगा लेकिन मुझे इतना इतना धन चाहिए। तो सुखदेव महाराज जी निरंतर शिरोमणि हैं और परीक्षित महाराज सर्वश्रेष्ठ था इस पृथ्वी के, दोनों आमने सामने हैं। और तो दोनों के हृदय क्या है? हरि कथा का है, हरि कथा का लोग है। आज वर्तमान में लोग व्यावसायिक कथाकार कथावाचक बनते हैं, व्यावसायिक आध्यात्मिक सलाहकार भी बनते हैं, सभी शास्त्रों का बड़े बड़े पंडित होते हैं, बड़े बड़े ज्ञान हासिल कार्य करते हैं और उसके आधार पर लोगों को आध्यात्मिक सलाह भी देते हैं और उसके बदले धन प्राप्त करते हैं। सामान्य लोग ऐसे भौतिक गुणवत्ता धारक व्यक्ति को श्रेष्ठ आदर्श या नेता मानते हैं। इस श्लोक के अनुसार ही बात चलिए, आचार्य श्रेष्ठ तत्त एवं तजना समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति को एक आदर्श माना जाता है और सामान्य लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। एक खेल की लज्जा की बात है, कैसे आध्यात्मिक संस्थाएं भी है जहां पर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आपको कथावाचक करना है। और लोग बड़े बड़े लोग कथावाचक बनते हैं, कथाकार बनते हैं, प्रसिद्ध कथाकार बनते हैं और हजारों लाखों के तादाद में लोग वहां पर आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं, उनका भी मनोरंजन हो जाता है और उसका भी धन उसको मिल जाता है। और तुम दोनों के जीवन में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं, तो भले आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति भी हो, पंडित भी हो, उसका स्थान कहां पर है? आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष, क्योंकि सामान्य लोगों ने उसको श्रेष्ठ माना होगा क्योंकि वो अच्छी बातें कहता है, लोगों को सलाह देता है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि बदले में क्या चाहता है, क्या प्राप्त करता है। आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष से लोग क्या प्राप्त करते हैं? लोगों ने कैसे लेकिन श्रेष्ठ पुरुष को चुना है, प्राप्त किया गया देखते हुए उस पुरुष से, और कैसे आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष से लोग क्या प्राप्त करते हैं? पहली बात तो क्या है, धोखा प्राप्त करते हैं। क्या धोखा मिलता है? ऐसे लोग जैसे देखते बाहरी रूप से वैसे होते नहीं। भक्ति ठाकुर जी भी बोली अपने भजनों में इसकी निंदा करते हैं, गले माला माथे तिलक ये क्या है, कली का चेला। तो कली ने ऐसे बहुत सारे चेले अपने बना लिए हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चले हैं, बोलने में बहुत निपुण है, ऐसे बोली बोलते कि सामने वाला व्यक्ति का दिल हृदय पिघल जाता है, मग्न हो जाता है। परंतु ऐसी वाणी सुनने के पश्चात न इसका हृदय परिवर्तित होता है न बोलने वाले का। तो ये एक प्रकार से क्या है, व्यक्ति को आध्यात्मिक सलाह प्राप्त हो रही है, दे भी रहा है और ले भी रहा है, लेकिन दोनों के हृदय में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक प्रकार से बड़ा धन है। दूसरी बात, बड़े बड़े वायदे होते हैं, अपने तथाकथित आदर्श नेता को चुनाव में जीत दिलाते हैं, ये दूसरी बात है, क्योंकि उनसे कई वायदे किए जाते हैं और ऐसे आधुनिक श्रेष्ठ व्यक्ति से सामान्य जनता को वायदों के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता है। कई सारे चुनाव लोग लड़ते हैं, लोग चुनाव में अपना वोट भी देते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में लोग जाते हैं, इसका भी सुनते हैं उसका भी सुनते हैं, तो जो व्यक्ति ज्यादा वायदे करता है लोग उसको चुनाव अपना वोट देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, सामान्य जनता को वायदों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। तीसरी बात, ऐसे श्रेष्ठ आधुनिक श्रेष्ठ पुरुषों से हमें गलत प्रेरणा प्राप्त होती है। और एक गलत प्रेरणा क्या है, आधुनिक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने स्वार्थ और सुखों को प्राप्त करने के लिए जो धूर्त मार्ग और पद्धति अपनाते हैं उसी पद को सामान्य जनता अत्यंत श्रेष्ठ व अधिभूत मार्ग समझकर पार करती है। आपको समझ में आ रही है, जो आधुनिक श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं भले वो सामाजिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, जिसने आध्यात्मिक कार्य को चुना है और जिसने भौतिक कार्य क्षेत्र को चुना है, दोनों के, लेकिन दोनों का उद्देश्य अगर धन प्राप्त करना हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थों को और सुखों को प्राप्त करने के लिए धूर्त अर्थात कपटी मार्ग को और पद्धति को अपनाते हैं। और जो सामान्य जनता का व्यक्ति है इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसके पद का अनुसरण करना है। लेकिन क्या है, अपनाने वाला व्यक्ति जो दूसरों को सिखा रहा है वो तो गलत मार्ग उसे स्वयं चुना हुआ है, और जो दूसरों को मार्ग दिखा रहा है, जो मार्ग प्राप्त करने वाले लोग थे सामान्य लोग, वे धोखे से ऐसे मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग करते हैं और उसका पालन करते हैं। और यहां पर आप उदाहरण रूप में देखते हो राजनीतिक लोग होते हैं, फिल्म कलाकार होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, यशस्वी व्यावसायिक होते हैं और वैज्ञानिक लोग होते हैं। ये सभी समाज के आधुनिक समाज के आदर्श लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं और लोग इसको अनुसरण भी करते हैं। मुझे बताइए कि जो लोग इन लोगों का अनुसरण करते हैं क्या भी जीवन में सुखी है, उनके जीवन में धन प्राप्ति हुई है, आदर्श प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी एडवर्टाइज होती है और एक फिल्मी कलाकार उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी आयोजन क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और लोगों को आदर्श मानकर उन चीजों को उपयोग में लाते हैं। लेकिन एक भक्तों ने कहा था, जितने भी सारे लोग हैं ना जो इस प्रकार से एडवर्टाइज करते हैं, वे खुद इन चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें पता है कि इसलिए अगर मैं विज्ञापन करता हूं मुझे इतना धन प्राप्त होगा, वो तो अपना धन लेकर चला जाता है, लेकिन बाद में लोग उसको अनुसरण करते हैं। क्रिकेटर्स जिन भी विज्ञापनों के द्वारा भी प्रदर्शित होते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि वे लोग खुद इन चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। वैज्ञानिक लोग बड़ा बड़ा संशोधन करते हैं, किस लिए करते हैं, अपने नाम और प्रतिष्ठा, और जो भी संशोधन करते हैं समाज में लाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लोग उसको खरीद बड़े दवाइयां हो या अलग अलग साधन हो, इसके द्वारा समाज में लोग क्या करता है, इतना बड़ा श्रेष्ठ वैज्ञानिक है, ये झूठा नहीं हो सकता, ये झूठा नहीं कह सकता। लेकिन आप या आपको बता रही है ये लोग केवल धन संपत्ति सुख यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और चौथी बात, ऐसे लोगों से भी क्या प्राप्त होता है, चौथी बात घोर निराशा या अपेक्षा भंग माना हो जाता है। जब सामान्य व्यक्ति आधुनिक श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करता है, अंत में घोर निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आधुनिक श्रेष्ठ लोग स्वयं के स्वार्थ के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। जब हम कठिन धोखा में प्राप्त होता है तब बात समझ में आती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण आज जिस व्यक्ति की बात यहां पर करते हैं अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति की, और सभी आचार्य संत श्रेष्ठ महापुरुष आदर्शवान किसे कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
सामान्य व्यक्ति आधुनिक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा दिखना चाहता है, बनना चाहता है, उसकी जैसी खुशियां प्राप्त करना चाहता है ना। कई सारे जो अभिनेत्री होती है, कई सारी कॉस्मेटिक चीजें उन चीजों का विज्ञापन करते हैं, और हमारी माता जी उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसे बाल हो, उनके जैसा रूप हो, उनके जैसे कपड़े हो, उन्हें लगता है कि उन चीजों का अपनाने से हम उनके जैसे दिखेंगे, परंतु कितना भी हम उन लोगों का अनुसरण करेंगे उनके जैसा नहीं बन पाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन में जो साधु जीता है अगर उसके पद का अनुसरण करेंगे तो हम भी उसकी जैसा बन सकते हैं, उसकी जैसी गति हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक श्रेष्ठ पुरुषों का अगर हम अनुसरण करना चाहेंगे, इसे आधे व्यक्ति का अनुसरण करने जैसा है। अगर समाज का जो आध्यात्मिक ज्ञान से अंधा व्यक्ति है, भले भौतिक कितना भी हो, उसके पास यश हो, ज्ञान हो, जो तथाकथित ज्ञान से कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से भगवान की भक्ति से भिन्न जो व्यक्ति है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठित श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को समाज का अंधा नेता कहा जाता है। अंधे व्यक्ति को अगर लीडर बनाया जाए तो क्या होगा,
उसे खुद पद बना लेंगे तो उसके अनुसरण करने वाले व्यक्ति क्या होगी। परंतु जिसके पास ज्ञान की चक्षु है वो व्यक्ति भौतिक जगत से हमें उबार सकता है। तो दूसरे प्रकार के आधुनिक आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। तो दो प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष में दूसरा प्रकार क्या है, आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष। तो समाज के बुद्धिमान लोग आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष को कैसे देखते हैं, कोई बता सकता है? जिन्हें बुद्धि है हिसाब से भी बुद्धिमान लोग अब यहां पर आए, तो समाज के जो बुद्धिमान लोग होते हैं, मैं सामान्य लोग की बात कर रहा हूं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को हम मार्गदर्शक के रूप में चुने, उसको कैसे पहचाने, क्या उत्तर दिया?
उनका आचरण शास्त्रों के आधार पर,
उनका आचरण शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। और देखिए, आपको भी कोई ना कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है जो बिल्कुल नया है लेकिन बहुत ही मासूम है, भोला है और भगवान की भक्ति करना चाहता है, पहली बार वो मंदिर में आना या फिर आना चाहता है और वो मार्गदर्शन भी लेना चाहता है। लेकिन वो हम देखते समाज में तो आज इतना गंदा वातावरण हो चुका है कि लोग साधु के वेश धारण करते हैं और गलत काम करते हैं और गलत, कोई लोग इस प्रकार का संप्रदाय बनाते हैं केवल दूसरों को लूटने के लिए। तो लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावनाओं पर बड़ा असर पड़ता है, खींच पहुंचती है, तो लोग डर जाते हैं, हम जाएं तो कहां जाएं, सच्चे साधु को कैसे समझे, कैसे ढूंढे, कैसे पहचाने। आप यहां पर आए हो तो आप ऐसा क्या देखते हो, क्या समझते हो कि ऐसे साधु को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए? तो उनका की उसका आचरण उस प्रकार का होना चाहिए, उनके आध्यात्मिक जीवन में कितनी रुचि है और
सात्विक
होना जी,
सात्विक सात्विक
सात्विकता। जो व्यक्ति धाम में, तो धाम में तो साधु से ज्यादा ठग रहते हैं जी। अच्छा, गोविंद धाम की बात कर रहे हैं जी, परंपरा से जुड़ा हुआ है। और भगवान कपिल माता देवहूत को श्लोक सुनाते हैं, तो बुद्धिमान लोग आध्यात्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक व्यवहार को देखकर चुनते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में इसका वर्णन आता है, भगवान कपिल माता देवहूती को भक्तियों का वर्णन सुनाते हैं। तो साधु किसे कहा जाता है, उसके गुण क्या होते हैं, तो कुछ गिने चुने गुणों का वर्णन भगवान करते हैं। पहला गुण क्या है, तितिक्षणा, वो सहज नहीं, सहजता ऐसा गुण है जो जिसका हम भोग नहीं कर सकते, उसका अनुकरण नहीं कर सकते, ये आध्यात्मिक तपस्या साधना से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो साधु का पहला लक्षण क्या है, वो तितिक्ष होता है, सहज होता है। दूसरी बात कारुणिका, दूसरे लोगों के प्रति उसके हृदय में दया होती है, उनका शोषण करने की भावना नहीं होती है, स्वयं मिट जाता है लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीता है। तो समझ लो जिसके हृदय में दूसरे के कल्याण, दूसरे को लाभ देना चाहता है, दूसरों को भगवान के बारे में कहता है, तो भगवान के नजदीक ले जाने का प्रयास करता है, सुहृद अर्थात क्या, बहुत ही घनिष्ठ मित्र होता है। सर्वदेही नाम, केवल एक दो लोगों का नहीं, सभी जीवों के प्रति, केवल मनुष्य नहीं, सामान्य अत्यंत तुच्छ चीटी जैसे सामान्य जीवों के प्रति भी आदित्य घनिष्ठ और उसका हित कार्य होता है। आजाद शत्र में शांत, आजाद शत्र मतलब क्या, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, गलत है, वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, इसके बदले में क्या है, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। हालांकि भगवान के भक्त के इस संसार में अधिक शत्रु होते हैं, एक सामान्य भक्तिवाद में जितने शत्रु नहीं होते, जितने उतने अधिक शत्रु एक भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भक्तों से अधिक अभक्त असुरों का अधिक यहां पर पास होता है, और असुर अभक्त लोग हमेशा भक्तों का द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी भाषा करते हैं, वे लोग सहन नहीं कर पाते भक्तों को, और तो भगवान का भक्त कभी भी ऐसे लोगों को अपना शत्रु नहीं मानता, फिर भी क्या करता है वो, उसी को व्यक्ति कितना भी कष्ट दे वो हमेशा दूसरों के प्रति हितकारी होता है। इसलिए भक्त ठाकुर जी कहते हैं भगवान का भक्त जो होता है पर दुख दुखी होता है। जो लोग भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, उनका द्वेष करते हैं, भक्त उनके प्रति इससे दयालु होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे व्यक्ति भगवान के भक्तों की निंदा करके अधिक और जल्दी नरक में जा रहा है, तो वे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आप इसको ऐसे बुद्धि प्रदान करो कि भगवान के भक्तों का द्वेष करने की बजाय भक्तों की सेवा करो, तो जिसके कारण आपकी भक्ति नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये साधु के लक्षण होते हैं, अजात शत्रु और शांत, शांत इसका अर्थ है नहीं वो कुछ कार्य नहीं करता है, वो सब कुछ सहन करने के पश्चात, अपमान सहन करने के पश्चात, सभी प्रतिकूल वातावरण में रहकर भी, स्थिति में रहकर भी बिल्कुल स्थिर मन का होता है, और इस प्रकार के सदगुण धारण करते हुए हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे
हरे, तो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निरंतरता से लगा रहता है। और जिस व्यक्ति व्यक्ति के पास ये सभी प्रकार के सदगुण जो यहाँ पर वर्णित किए गए हैं, इसको आभूषण कहा जाता है। साधु के पास भी बड़े बड़े आभूषण ही होते हैं, सोने चांदी के आभूषण ही होते हैं, मोती जैसे जो आभूषण होते हैं, इनके आभूषण नहीं होते हैं, तो भौतिक आभूषण के बजाय साधु के पास सद्गुण जैसे आभूषण होते हैं। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन प्रयत्न करना है तो जैसे एक स्त्री एक पुरुष पत्नी या पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले देखते हैं ना इसके पास क्या है। आजकल आधुनिक समाज के लोग उसके पास कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर दिखने में कैसा है, इस भौतिक स्थिति के आधार पर लोग उसको अपना पति या पत्नी के रूप में चुनते हैं, परंतु वैदिक काल के व्यक्ति को उसके पास कितने सद्गुण है, सद्गुण के आधार पर उसको पति या पत्नी के रूप में, साधु के रूप में, शिष्य के रूप में चुना जाता था, गुरु के रूप में चुना जाता था। तो भगवान कपिल यहाँ पर एक साधु के आभूषण के बारे में कहते हैं, साधु के पास बड़े बड़े आभूषण भौतिक सोने चांदी जैसे आभूषण नहीं होते, साधु के आभूषण से सद्गुण ही होते हैं, और जितने सद्गुणों का विकास उसने किया हुआ है उसको श्रेष्ठ साधु कहा जाता है। तो हमें भी जब हम मंदिर में आते हैं या फिर आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं तो साधु को चुनना या समझना शायद कठिन बात है, लेकिन सोच समझ कर चुनना चाहिए। मुझे अगर ये सदगुण उसके पास में दिखाई दे रहे हैं तो फिर उससे मार्गदर्शन लेने में भी कोई समस्या नहीं हो सकती। आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष से लोग क्या प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष से पहली बार ऐसे व्यक्ति समय भरोसा विश्वास और श्रद्धा प्राप्त होती है, क्योंकि जिसके पास ये विश्वास उनके धन जो है वो सबको दे सकता है। कृपा जी कहते हैं अगर आपको भगवान के प्रति श्रद्धा है, बहुत दृढ़ श्रद्धा है, उतने विश्वास से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को प्रचार नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा कमजोर है तो दूसरों को बताते समय भी हम इस प्रकार से दृढ़ता से बता सकते हैं, विश्वास के साथ बता सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास, जिस साधु के पास, आध्यात्मिक पुरुष के पास, व्यक्ति के पास भगवान के प्रति शुद्ध श्रद्धा है, वो भी दूसरों को विश्वास भरोसा श्रद्धा दिला सकता है। तो ब्राह्मण आध्यात्मिक व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति तथा सामान्य व्यक्ति भी शास्त्रों पर, भगवान पर तथा अपने आप पर विश्वास प्राप्त करता है। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास प्राप्त करता ही है, अपने आप पर विश्वास कैसे? आप किस स्तर तक तो पहुंच जाते हैं, कम से कम एक ज्ञान के स्तर पर, विज्ञान के स्तर तक तो नहीं, ये तो हम कब से भी समझ जाते हैं कि मैं शरीर आत्मा हूं। भगवद गीता के अनुसार मैं भगवान का नित्य अंश हूं, भगवान पूर्ण है और मैं अंश हूं। जब इस प्रकार का संबंध जुड़ जाता है, भगवान पूर्ण है और मैं अंश हूं, तो अंश को पूर्ण की सेवा करनी चाहिए, तो ये भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। अदव श्रद्धा तथा साधु से भजन किया। तो जब श्रद्धा का विकास हो जाता है हमने अदव श्रद्धा, तब साधु के संग में हम आने लगते हैं, भक्तों के संग में आने लगते हैं, और जब भक्तों के संग में आने लगते हैं भजन किया, अर्थात भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को सुनना,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
तो अपने आप में श्रद्धा शुरू हो जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति से सबसे पहली बात का प्राप्त होती है श्रद्धा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से बताते हैं, अगर हम भक्तों के सामने आते हैं ना, तो हमारी अज्ञान सुकृति अपने आप बढ़ने लगती है, और जब तक ये सुकृति पुण्य, आध्यात्मिक पुण्य नहीं बढ़ेगा, तब तक श्रद्धा का विकास नहीं होगा। इसलिए जैसा संग वैसा कर्म। भगवान के भक्तों के संग में जब आते हैं, तो भक्तों के संग में आते हैं तो भक्तों के पास श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, आसक्ति है, तो इन पवित्र गुणों का संसर्ग हमें हो जाता है, तो हमें भी भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और अंततः हमारे अर्थात अपने आप पर श्रद्धा बढ़ती है। आप तो हम स्वयं को केवल शरीर मान रहे हैं, लेकिन आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम कह सकते हैं कि आत्मा। वादे पूर्ण होते हैं, जो वादे किए जाते हैं, वादा तक यहां पर जो उपदेश हम प्राप्त करते हैं, आप जब भी प्रवचन सुनते हैं, भक्तों के मुख से सुनते हैं, क्या सुनते हैं? अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो हमारा मन स्थिर होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारा हृदय पवित्र होगा, जीवन में शांति आएगी। तो एक प्रकार के आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुषों से एक प्रकार के फायदे ही होते हैं। वास्तव में हमें उनको कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन वे हमें क्या करते हैं, किस प्रकार के वादे हमें देते हैं। और तो गोपाल कहते हैं कि जब साधु के मुख से हम कुछ वचन सुनते हैं तो वचन कभी निष्फल नहीं होते हैं। जब हम उनके उपदेश को जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित ही उनके हमें पता हुए मार्ग को धारण करते हैं, यश परिणाम में प्राप्त होगा। उनके वायदे इसलिए पूर्ण होते हैं क्योंकि वे प्रमाणित शास्त्र संतों के वचनों को दोहराते, केवल दोहराते नहीं है, जीवन पालन भी करते हैं, और इस आचरण के कारण है उनके वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं, योग्य प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति की साधना, तपस्या, भगवान के प्रति श्रद्धा, शुद्ध परंपरा से प्राप्त ज्ञान, वो भक्ति के कारण, भक्ति पद्धति के कारण उसका व्यवहार इतना शुद्ध और प्रसन्न होता है कि अन्य लोगों का मन व आत्मा प्रसन्न हो जाता है। भक्तों को देखकर तो जब प्रभुपाद जी विदेशों में प्रचार कर रहे थे और प्रभुपाद जी के संपर्क में जितने भी माताएं या जो पुरुष वर्ग आए थे, सभी युवा था और उन्हें भक्ति में चैतन्य को देखकर, उनकी भक्ति मां का पालन देखकर, जब ये सभी लोग पहले गलत काम करते थे, क्योंकि पाश्चात्य देशों में सभ्य संस्कृति का अभाव है, वैदिक संस्कृति का अभाव है, और जब ये लोग गीता भागवत का पालन करने लगे, ईश्वर गोपाल जी के उपदेश का पालन करने लगे, उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की चमक थी, अलग ही प्रकार की प्रसन्नता थी। और बड़े बड़े पादरी भी जब गोपाल जी के इन शिष्यों को देखते थे तो गोपाल जी कहते कि आपके शिष्यों के जीवन में उनके मुखमंडल पर ऐसा क्या तेज है जो भाई हम भी आकर्षित होते हैं, आप उनको क्या खिलाते पिलाते। तो अलग कुछ खाने पीने से लेकर के चेहरे पर चमक नहीं आती है। जब जीवन में आध्यात्मिक भक्ति में जीवन का हम जब पालन करते हैं ना, तो तपस्या का तेज प्रभाव हमारे शरीर से प्रकट होता है। एक सामान्य बात है, बड़े बड़े योगी जब तपस्या करते हैं ना, तो उनके शरीर से एक अलग अलग प्रकार के आभार तेज प्रकट होता है। ये तपस्या साधना का परिणाम होता है। और जब ये पादरी या अलग अलग आध्यात्मिक नेता कृपा से मिलते थे तो उनके शिष्यों के बारे में चर्चा करते थे, कृपा देखिए बात बताते थे, मैं ज्यादा कुछ बताता नहीं हूं, ये लोग केवल मेरे उपदेशों का पालन करते बस। और कृपा जी को उपदेश क्या थे, सोलह माला का जाप कीजिए, चार चीजों का पालन कीजिए, चार चीजों को पालन कीजिए। और ये चार चीज क्या है जो हम भगवत गीता अभ्यास को बताते हैं, भक्तों के संग में आइए, ग्रंथों का वाचन कीजिए, पठन कीजिए, नाम जाप कीजिए और केवल भगवान का प्रसाद आप नहीं करो, ये चार चीजें कीजिए और चार चीजें मत करो। कौन सी है, मांसाहार का सेवन मत करो, नशा पान मत करो, जुआ मत करो और व्यभिचार मत करो। मैं भी लोगों के लिए ये इन चीजों को बताता हूँ बस, ये बाकी लोग हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, केवल इतनी चीजों का पालन करने से लोगों के चेहरे पर जीवन में इतना बड़ा तेज है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभुपाद स्वयं इन चीजों का पालन करते थे, इसलिए उनकी वाणी में ये ताकत थी, शक्ति थी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आचरण पर बड़ा जोर दिया जाता है और योग्य प्रेरणा को प्राप्त होती है। स्वयं आचार्य कहते हैं कि आचार्य स्वयं आचरण करता है, जो व्यक्ति आचार्य आचरण करता है उसे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आचरण नहीं करता उसको बहुत बोलना पड़ता है, घंटों घंटों तक बोलना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसका आचरण इतना प्रभावशाली होता है उसे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसे लोग के संपर्क में जो भी लोग जाते हैं ना, वे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष से चौथी बात प्राप्त होती है, परम कल्याण की आशा। आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष से हमें केवल धोखा ही प्राप्त होता है, निराशा ही प्राप्त होती है, परंतु आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुषों से हमें परम कल्याण की आशा प्राप्त। अगर हमें जीवन में सही दिशा में जाना है, श्रेष्ठ चीज को प्राप्त करना है, जीवन को सफल करना है, तो हमें इसे आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुषों से साधुओं से संपर्क लेना है। जब सामान्य व्यक्ति तथा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति का अनुसरण करता है तो शुरुआत से अंत तक बुद्धि के अनंत पर समाधान का अनुभव करता है, प्रारंभ से, क्योंकि प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन निस्वार्थ तथा दूसरों के कल्याण के लिए होता है। और जो साधु अन्यों के उद्धार हेतु जीता है, भगवान उसके द्वारा सभी परम मंगल प्रदान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो प्रामाणिक आध्यात्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसकी साधना तपस्या भक्ति के कारण भगवान से सारी शक्ति प्रदान करते हैं। श्री प्रभुपाद जी को इस प्रकार से मानते हैं, प्रभुपाद जी को शक्ति में अवतार कहा जाता अर्थात भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होती है। भगवान ने अपने इस जगत में जीवों के उद्धार के लिए अपने निजी पार्षद को, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को, एक शुद्ध भक्त को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, और उस शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के कारण शुद्ध भक्त क्या करता है, भगवान कृपा को संपूर्ण जगत में वितरित करते हैं। जब श्री कृपा जी इस भौतिक जगत में अर्थात अलग अलग देश विदेश में प्रचार कर रहे थे, कई लोग तो कृपा जी को देकर भगवान के भक्त बन जाते थे। साधु या भगवान का भक्त उसे कहा जाता है जिसे देखकर भौतिकवादी व्यक्ति भी भगवान को याद करते हैं, है ना। जब आप में से कई भक्त लोग तिलक धारण करते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, हाथ में जाप माला है और वैष्णव पोषण आपने धारण किया है, अगर बाह्य परिवेश को देखकर देखकर भी लोग क्या कहते हैं, अरे भैया हरे कृष्ण हरे हरे राम वाले लोग आ रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को याद दिलाते हैं। वे लोग भगवान का नाम जाप नहीं करते, भक्ति नहीं करते, फिर भी क्या करते हैं, वैष्णव को साधु को देखकर उन्हें भगवान की याद आती है। कृपा जी तो भगवान के नाम सुनकर मानते, भगवान की शक्ति उन्हें प्राप्त है, तो जब कृपा जी चलते थे उनका चलना देखकर लोग भगवान को उनके भक्त बन जाते थे। एक बार श्री कृपा जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते से श्री कृपा जी को प्यास लगी, तो कृपा जी गिलास को उठाया और इस प्रकार से धारण किया, उनका पानी पीना देखकर कई लोग भक्त हो गए। तो सारा शास्त्र क्या है, जो आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष होता है उसके आचरण, उसकी भक्ति, उसकी तपस्या को देखकर भगवान उसको अपनी तपस्या की शक्ति प्रदान करते हैं और उसके द्वारा जीवों को परम कल्याण मांगल्य प्रदान करते हैं। तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा भी ये लाभ प्राप्त होते हैं। अभी आधुनिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतर क्या है, पहली बात, प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति आचार्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, आधुनिक और आध्यात्मिक पुरुषों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आचरण होता है और उस आचरण के द्वारा ही वो पहचाना जाता है। आपने तुकाराम महाराज जी का उदाहरण सुना होगा, अगर आपने तुकाराम महाराज जी और शिवाजी महाराज जी का इतिहास पढ़ा है, सुना है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तुकाराम शिवाजी महाराज के कानों तक एक समाचार आता है और कई तथाकथित ब्राह्मणों ने, श्रेष्ठ समाज के वर्ग के लोगों ने शिवाजी महाराज पे शिकायत की थी तुकाराम महाराज जी के बारे में, और शिकायत क्या थी, यह व्यक्ति जो है पाखंडी है। ये तुकाराम नाम का जो साधु, एक साधु का भोग कर रहा है समाज के केवल लोगों को भड़का रहा है, लोगों के प्रदर्श कर रहा है, आप कृपा करके आप इसको दंड दो। परंतु शिवाजी महाराज जी ने उनकी शिकायत सुन ली और तो पुराने तुकाराम महाराज जी की परीक्षा ली, ये लोग इनको पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, वास्तव में सच्चा साधु क्या पाखंडी व्यक्ति है। इसकी परीक्षा लेने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, जैसे हमने शुरुआत में देखा साधु विरक्त होता है, उसका आचरण, उसकी तपस्या, उसका त्याग, इसकी पहचान होती है। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपने सेवकों के द्वारा बड़ी बड़ी थालियों में रत्न आभूषण, बड़े बड़े अलंकार तुकाराम महाराज जी को घर भेज दिए और तुकाराम महाराज को घर में नहीं, तुकाराम महाराज का एक ही व्यवसाय था,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे। भगवान के हरि भक्ति को करने के लिए किसी वन में या किसी जंगल का पहाड़ पर चले जाते थे और जब सूर्य ढल जाता था तब वापस आते थे। शिवाजी महाराज एक स्थान पर छिप कर इस दृश्य को देखना चाहते थे कि मैंने जो भी भेंट तुकाराम महाराज के घर भेजी है, इस भेंट को देखकर, इस आभूषण को देखकर तुकाराम महाराज की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन उनके घर वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चों ने सारे भेंट को देखकर सभी पहन लिया, तो तुकाराम महाराज जी के घर में कई सारे वस्त्र अलंकार भी भेजे थे और सभी उनके घर के लोग आता, तुकाराम महाराज की पत्नी, उनके बच्चे सज धज कर तैयार थे तुकाराम महाराज को आश्चर्य का धक्का देने के लिए। तो तुकाराम महाराज शाम को जब लौट कर आते हैं तो अपनी पत्नी को और बच्चे को पहचान नहीं पाते, वे पास में खड़े होकर भी अपनी पत्नी को अपने बच्चे को पुकार रहे थे। लेकिन पत्नी ने जब कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे देखो, तो तुकाराम महाराज आश्चर्यचकित हो जाते, तो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के पास कोई गहने नहीं है, अच्छे आभूषण नहीं आता, अच्छे कपड़े नहीं थे, तुम कौन हो? तब उनकी पत्नी ने अपना परिचय दिया, अपने बच्चों का परिचय दिया और कहा कि देखो शिवाजी महाराज जी ने आपके लिए ये सारे वस्त्र अलंकार भेजे, आपके लिए भेजा। तो तुकाराम महाराज जी ने अपनी पत्नी और बच्चों के शरीर से सारे आभूषण निकाल दिए और उनको कहा कि जाओ अपने पुराने वस्त्र पहन लो। और तुकाराम महाराज सारे पहने आभूषण जो वस्त्र अलंकार थे घर के बाहर रखे और शिवाजी महाराज जी के सेवकों ने कहा कि ये साक्षात स्वयं राजा ने, शिवाजी महाराज ने आपको दिया। तब तुकाराम महाराज जी कहते हैं हम तो साधु लोग ही हैं, इन वस्त्र अलंकार से हमें क्या लेना देना, साधु का दृष्टिकोण कैसे होता है? चाणक्य पंडित भी अपनी चाणक्य नीति में बता रहे हैं, मातृवत परत राजेश परत गर्वेश दोष पर आत्म सर्वभूतेषु न पश्यति पंडित, मातृवत परत राजेश पराय स्त्री को अपनी माता की दृष्टि से देखना, पर ग्रेजुएशन दोष्ट होता, दूसरे के धन को धूल के समान, मिट्टी के समान समझना। किसी व्यक्ति ने आपको मुट्ठी भर मिट्टी आपके हाथ में दे दी, आपको लोग आए कैसे और जाकर किसी तिजोरी में रख दो, मिट्टी तो आपको जगह जगह मिल जाएगी, उसका लोभ आपको कभी नहीं होगा। अगर किसी के धन के प्रति इस प्रकार की भावना को उपज हो गई तो आपके जीवन में या हमारे जीवन में लोभ नहीं आएगा। तो तुकाराम महाराज देखते हैं उनके मतलब ये सिद्धांत के जीवन में लागू होता है। तुकाराम महाराज हमेशा दूसरे पराय स्त्री को पर नारी रामा रुक्मिणी माते समान, और यहाँ पर इस घटना में जिसे देखता है शिवाजी महाराज के सेवक बताते हैं आपके महाराज जी को बता दो कि ये धन उनके द्वारा जो भेजा गया है मुझे मिट्टी के समान है, धूल के समान है, आप तो साधु लोग हैं, इतने बड़े धन और आभूषण का हम क्या करेंगे, आप इसे एक काम करो राजा के टीचर में डाल दो, राजा को काम में आएगा। तो सेवक बड़े क्रोधित हो गए, आपको पता है राजा के भेंट को लौटाना मतलब क्या है, राजा का अपमान है, इसलिए साधु क्या होता है प्रतीक्षा और आलोचना सुरंग सुरंगी है, साधु को मान अपमान से परे होता है, हमें मान अपमान कोई परे नहीं है और ना ही हम किसी का अपमान करें, हमें राजा से मांगा है, राजा ने हमको भेजा है, अगर हम लौटा रहे तो इसलिए राजा का क्या होगा। इस सारी बात शिवाजी महाराज जी चुपकर सुन रहे थे, ये सामने आते हैं और सीधा तुकाराम महाराज के चरणों में गिर जाते हैं, धन्यवाद प्रणाम करते हैं। यहां तक शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज इतने बड़े भक्त बन जाते हुए अपने सेवकों को कहते कि आप जाकर मेरी माता जीजा माता को बता दो, मैं अभी मैंने सब कुछ त्याग दिया है और तुकाराम महाराज जी का शिष्य का सेवक हो रहा है, केवल तुकाराम महाराज के श्रेष्ठ आचरण को देखकर इतना बड़ा धर्मात्मा राजा ने उनका सेवक हो गया। लेकिन बाद में देखते हैं कि तुकाराम महाराज उनको घर भेजते हैं, वे कहते कि आपको मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है परंतु समाज को राष्ट्र को आपकी आवश्यकता, हम साधारण कैसे भी जीतेंगे लेकिन समाज की रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको आज्ञा देता हूं आप पुनः राजा का पद स्वीकार करो, सारे कर्तव्यों को निर्वाह करो और समाज को धन के नाम पर आप ले लो। तो इस उदाहरण से देखते हैं प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति आचार्य होता है। साधु विरक्त होता है, साधु विनयशील होता है, विनम्र होता है, सहनशील होता है, ये बोलने की बात नहीं है, ये जीवन जीने की बात है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें भी यही संदेश देते हैं कि हमें भी एक आचार्य के समान जीवन जीना चाहिए। तो आज की चर्चा जो हम अगले गुरुवार में करेंगे, किसी को भी प्रश्न होता हम बाद में पूछ सकते हैं। समय हो जाएगा। श्रीमद भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कीर्तन का दर्शन हुआ।